सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग तृप्तिदीप प्रकरण में उस ज्ञानी की जो तृप्ति है उस तृप्ति के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। वो ज्ञानी अपने विषय में क्या सोचता है, जब ज्ञान हो जाता है अपने स्वरूप का तो वो क्या सोचता है इसके विषय में क्या है, ये अंतिम पड़ाव पर क्या है ग्रंथ के वो ज्ञानी अपने विषय में कह रहे हैं। तृप्ति का अनुभव जो करता है, मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया, मैं अब मैंने उस क्या है तत्व को, स्वात्मभूत आत्मा को, जो स्वात्मभूत है अपना आत्मा है, ब्रह्म है, स्वात्मभूत ब्रह्म को, उस ब्रह्म को क्या है मैंने जान लिया। जानने के कारण क्या है कृतार्थ का अनुभव कर रहा है, अर्थात उनको आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है, उनको हर्ष हो रहा है। कैसे उनको प्राप्त हुआ है अपना स्वरूप, कैसे जान लिया है उन्होंने, तो अंजसा कहते हैं, अंजसा अनायास है। कोई भी चीज प्राप्त होती है बस उस प्राप्ति के जितने भी साधन है उस साधन के प्रति हमारा जो समर्पण है वो यदि सही समर्पण है तो हमारा लक्ष्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोग कहते बहुत कठिन है, क्या है आत्मज्ञान बहुत कठिन है, मोक्ष बहुत कठिन है, किंतु यहां तो ज्ञानी अपने विषय में अपना अनुभव बताता है अंजसावेद में, अर्थात मैं अनायास ही मैं जान रहा हूं। और हम तो अनुभव कर रहे हैं तो अनायास तो नहीं हो रहा है, बहुत कठिन लग रहा है हमको, और वो तो सहजता का अनुभव कर रहे हैं और हम तो कठिनता का अनुभव कर रहे हैं। तो इसका एक ही कारण है, इसके प्राप्ति के जो नियम है उन नियमों का हम अनुसरण नहीं करते तो हमारे लिए कठिन सा हो जाता है। बस इनके नियम जो है प्राप्ति के, आत्म प्राप्ति के, आत्मज्ञान प्राप्ति के, उन नियमों को, उन साधनों को हम क्या है अपने जीवन में उतारते हैं अथवा उन साधनों के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारे लिए आत्मज्ञान सहज है। उनको सहज इसलिए लगा है, वास्तविक सहज ही है वो। त्यागेन एकम अमृतत्व मानुष, ऐसा कहा श्रुति कहती है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन, तो वहां मात्र क्या कह दिया त्याग, त्याग मात्र से क्या है अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो त्याग बहुत सरल चीज है, त्याग के लिए आपको कई महीने कई साल ऐसे लगता है, ऐसा नहीं है। एक बार हमारे गुरुजी किसी भक्त से पूछ रहे थे, अच्छा ये बताओ तुमने जो घर बनाया मकान बनाया ये बनाना सरल है क्या, इस घर को छोड़ना सरल है? तो सही सही बता देना। बोले छोड़ना कठिन है बनाना सरल है। क्या है छोड़ना कठिन है बनाना सरल है? कैसे सरल है? आप तो बड़ी विचित्र बात कर रहे हो। ये बताओ तुमने ये जो घर बनाया कितने साल लगे इसको, इसके लिए कितनी मेहनत की तुमने? कम से कम अपने रिटायर होने तक, आपका बनते बनते आपके रिटायर होने तक पूरा मकान हो गया आपका, तो मान ली 25 साल लग गए आपको मकान बनाते बनाते, तो बनाने के लिए 25 साल रहेगा, अब उस छोड़ने के लिए कितना लगेगा समय? एक मिनट? परंतु वो क्या कह रहा है, छोड़ना कठिन है बनाना सरल है। जो वास्तविक कठिन है उसको सरल समझता है और जो सरल है उसको कठिन समझता है। ज्ञानी को यही तो अनुभव हो रहा है अंजसावेद में, मैं सहज अनायास से मैं जान रहा हूं उसको। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने जान लिया, उन्होंने वास्तविकता क्या है, जानने के पीछे वास्तविकता यही है कि छोड़ना ही क्या है, जानने में क्या है, एक सरल साधन है, छोड़ देना, हर चीज को छोड़ देना। कैसे छोड़ देना? मन से छोड़ देना है, शरीर से छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम शरीर कुछ वस्तुओं से ही, वस्तु के भीतर ही तो हम रहेंगे। मान ली घर छोड़ के रहेंगे, तो घर छोड़ के रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो एक रहेगा आश्रय, तो वो भी तो एक प्रकार का घर ही है। आश्रय घर भी अपना आश्रय है, और कहीं जाके रहेंगे तो वहां पर भी तो कमरा ही रहेगा, कमरा नहीं रहेगा तो घास की कुटिया रहेगी, इतनी सी बात है। परंतु शरीर की रक्षा के लिए तो आश्रय तो बना ही लिया। इसका मतलब यह है किसी वस्तु को छोड़ना है तो कैसे छोड़ना? अंतकरण से छोड़ना है। शरीर से छोड़ने से तो होता है, परंतु यदि विचार करेंगे तो वहां पता लगता है कि मन से छोड़ना ही वास्तविक छोड़ना है। अब विचार नहीं करेंगे तो फिर हमें लगता नहीं शरीर से छोड़ने से ही क्या सब कुछ होता है, ऐसा नहीं। विचारवान व्यक्ति मन से छोड़ देता है, और जो विचार नहीं करता है, आधा अधूरा विचार है, तो वो ये समझ लेता है कि नहीं ये शरीर के साथ जितने का संबंध है उनको भी छोड़ना पड़ेगा, तो कहते ऐसा नहीं है। मन से ही छोड़ेंगे तो अनायास हो जाता है, मन से नहीं छोड़ेंगे तो अनायास नहीं है। अब इस आत्मा को जानने के बाद अनायास से उसका उन्होंने ये फल बता दिया कि मुझे ब्रह्मानंद की क्या है, अनुभूति हो रही है, उस ब्रह्मानंद का क्या है, भान हो रहा है, स्पष्ट भान हो रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, मैं धन्य हूं। अब देखिए, एक प्राप्ति के कारण क्या है, अर्थात बोध के कारण आनंद हो रहा है, धन्यता कह रहे हैं ज्ञानी, और वो जो प्राप्ति, उस ज्ञान हो गया, उस ज्ञान का जो फल क्या है, आनंद, वो आनंद को भी क्या है, वो अनुभव कर रहे, इसलिए भी क्या वो अपने आप को धन्य कह रहे हैं। मैं तृप्त हो गया, कृतार्थ हो गया। अच्छा, एक की प्राप्ति हो तो फिर दूसरे तरफ क्या होगा, निवृत्ति भी तो होगी। एक की प्राप्ति तो दूसरे की निवृत्ति, तो निवृत्ति किसकी होगी, अज्ञान की निवृत्ति होगी, दुख की निवृत्ति होगी। तो निवृत्ति के विषय में भी क्या है, वो ये दुख मेरा निवृत्त हो गया, ये क्या है, अनुभव कर रहे, वो जान रहे, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, मैं धन्य हूं। उसी के विषय में 93 श्लोक जो है उसमें कह रहे हैं, 93 श्लोक देख लीजिए। एवं इष्ट प्राप्त हो, जब इष्ट प्राप्ति होने के कारण जो तुष्टि उनको अनुभव हो रही है, तुष्टि का तृप्ति का अनुभव हो रहा है, उसके बाद कहते हैं तुष्टिमाभिधाय, अर्थात इष्ट प्राप्ति के द्वारा जो तुष्टि का जो अनुभव आता, उसका कथन करते हुए अनिष्ट निवृत्ति, जो अनिष्ट था उसकी निवृत्ति से भी क्या उनको संतोष हो रहा है, तृप्ति का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। हाँ, क्योंकि आनंद एक निवृत्त होगा तो एक आएगा तो एक निवृत्त होगा ना, हट जाएगा, तो एक निवृत्त हो गया, उसके कारण भी उनको आनंद हो रहा है। देखिए, कोई चीज आने मात्र से पूर्ण रूपेण आनंद नहीं होता है, सुख नहीं मिलता है। जो हमारे लिए अनिष्ट है उसको हटाना भी पड़ता है। आ गई वस्तु, अनुकूल वस्तु तो आ गई, किंतु प्रतिकूल वस्तु रहना भी तो ठीक नहीं ना। अनिष्ट मतलब दुख, अज्ञान तो ज्ञान के द्वारा हट गया, किंतु उस अज्ञान का कार्य जो दुख, वो भी क्या है, हट गया। वो हटने के कारण उनको बड़ा आनंद हो रहा है, तृप्ति हो रही है। उस विषय में कहता है धन्योहम धन्योहम दुःखम् संसारिकं न वीक्षेद्य धन्योहम धन्योहम स्वस्या, धन्योहम धन्योहम स्वस्या, ज्ञानं पलायितं क्वापि, ज्ञानं पलायितं क्वापि, धन्योहम मैं कृतार्थ हो गया, धन्योहम मैं कृतार्थ हो गया। क्यों? दुखम सांसारिकम न वीक्षे आद्य, आद्य मतलब अभी इस समय में, ये सांसारिक जो दुख है मैं उसको देख नहीं रहा हूं, इसलिए भी क्या है मैं तृप्त हूं, आनंदित हूं, हर्षित हूं। मैं सांसारिक दुख देखेगा तो सुख थोड़ा ना होगा, तो अब मुझे दुख भी दिख नहीं रहा है सांसारिक दुख, इसलिए भी क्या है आनंदित हूं मैं, कृतार्थ हो गया हूं मैं। धन्योहम धन्योहम सस्य अज्ञानम पलायितुम क्वापि, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। क्यों? मेरा जो मेरे भीतर जो अपने स्वरूप का अज्ञान था वो कहां पलायन कर गया कोई पता ही नहीं लग रहा है। अब मैं उसको ढूंढने भी चाहूं तो मिलने वाला नहीं है। जैसे प्रकाश आते ही अंधकार को अब ढूंढना चाहोगे तो ढूंढ पाएंगे, उसका शोध हम नहीं कर पाएंगे, कहां पलायन कर दिया अंधकार उसको हम जान ही नहीं पाएंगे। इसी तरह जब ज्ञान आ गया, उस ज्ञान के कारण क्या है वो अज्ञान कहां पलायन कर गया कुछ पता ही नहीं लग रहा है। आश्चर्य की बात है जो उस अज्ञान ने इतने अनादिकाल से मुझे क्या करके रखा था, जकड़ के रखा था, पर जैसे ज्ञान आ गया वो कहां पलायन कर गया कुछ पता ही नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये सोच करके क्या तृप्त हो रहे, आनंदित हो रहे हैं। टीका देख लीजिए, धन्योहम इति अद्य इदानीं दुखम दुख स्वरूपम संसारम न वीक्षे न पश्यामि। कहता है अद्य, अद्य मतलब इस समय में, इदानीं दुखम अर्थात दुख स्वरूपम, कौन? संसारम, जो दुख रूप जो संसार है, न वीक्षे वो मैं उसको देख नहीं रहा हूं, न पश्यामि मैं नहीं देख रहा हूं, अतः कृतार्थ, इसलिए मैं कृतार्थ हो गया, तृप्त हो गया, आनंदित हूं मैं, हर्षित हूं मैं। अब दुख रूप संसार हट गए तो संसार कौन सा है? हमारा अपना जो संसार है, क्योंकि एक ईश सृष्टि है, एक जीव सृष्टि है। ईश सृष्टि किसी के दुख का कारण नहीं है, जो कुछ सृष्टि दुख का कारण है वो कौन सी? जीव सृष्टि। तो वास्तविक यहां संसार कौन सा नहीं दिख रहा है? दुख रूप जो संसार है वो कौन सा? हमारा अपना जो बनाया हुआ संसार, मैं और मेरा, अथवा ये शरीर मैं हूं ये मेरा है, अर्थात अन्य वस्तु में क्या है अपनत्व स्थापन करना, अपने स्वरूप में अपनी वस्तु में क्या है अपनत्व भाव स्थापन न करके दूसरी वस्तु में क्या अपनत्व का भाव स्थापन करना, ये क्या है संसार। तो वो संसार क्या अब दिख नहीं रहा, दुखम अर्थात दुख रूपम, कौन? मैं और मेरा रूप जो संसार, वो क्या है अब दिख नहीं रहा है, इसलिए क्या है मैं कृतार्थ हो गया। अब ये जो दिख रहा है संसार, ये ईश्वरीय संसार है, ये जो दिख रहा है ना ईश्वरीय सृष्टि, ये दुख का कारण नहीं है। ये उल्टा तो हमें अपने स्वरूप तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा साधन है, उपकारक है। ये कभी ईश्वरीय सृष्टि दुख देती नहीं है। जैसे बहुत से उदाहरण देते हैं, दो मित्र है विदेश में, और एक मर गया और एक जीवित है, किंतु जो मर गया उसके विषय में लेटर आया कि आपका पुत्र क्या है ठीक ठाक है, कोई चिंता की बात नहीं, और जो नहीं मरा है उसके विषय में कह दिया कि आपका पुत्र चला गया। अब देखिए, एक ईश्वरीय सृष्टि वाला पुत्र तो अभी भी है और एक ईश्वरीय सृष्टि वाला पुत्र तो चला गया, किंतु जिसको कह दिया, वास्तविक जिसका पुत्र चला गया उसको कह दिया तुम्हारा पुत्र है, तो उसको पढ़ करके आनंद हुआ। अब बताइए, उसके वो जो पुत्र है कौन सा पुत्र है उसके मन में? ईश्वरीय पुत्र तो चला गया, अपना मन का पुत्र क्या हो गया? चला गया, इसलिए क्या उसको कष्ट हो रहा है। और एक का वास्तविक पुत्र चला गया, किंतु वो क्या मान रहा है? मेरा पुत्र है। मतलब ईश्वरीय सृष्टि वाला चला गया, किंतु मन का पुत्र चला जाने के कारण दुख हो गया। और एक में नहीं चला गया, किंतु उसको कह दिया क्या है? तुम्हारा पुत्र है नहीं है, तो क्या हो गया वहां पर? दुख हो रहा है। ईश्वरीय पुत्र चला गया किंतु उसको कह दिया है, तो मन का पुत्र है इसलिए उसको सुख है। और ईश्वरीय पुत्र है किंतु उसको कह दिया तुम्हारा पुत्र नहीं है, तो क्या हो गया? और अर्थात ईश्वरीय सृष्टि दुख का कारण नहीं है, हम अपनी बनाई हुई सृष्टि क्या है? दुख का कारण है। इसलिए यहां पर जो संसार के बारे में बताते हैं वो मैं और मेरा, ये जो संसार है यह अब हट गया। न विक्षे अर्थात न पश्यामि अतः कृतार्थ। दुख अप्राप्तौ दुख अप्रतीतौ कारणम आह। अब दुख की प्रतीति क्यों नहीं हो रही है उसमें कारण बताते हैं। उत्तरार्ध के द्वारा बताया, धन्योहम स्वस्य अज्ञानम पलायी। क्या है? पलायितम क्वापि। मेरे दुख का जो कारण है वो क्या है? पलायन कर गया, अब दुख की प्राप्ति नहीं है। तो दुख की जो अप्रतीति है उसका मूल कारण क्या है? मेरा अज्ञान पलायन कर गया है। अनेक कर्म वासना जालम अज्ञानम क्वापि पलायितुम नष्टम इत्यर्थ। यह अज्ञान कैसा था? अनेक कर्म वासना जालम, अनेक कर्म वासना जालों से क्या बुना हुआ था यह अज्ञान। वह अज्ञान क्या है अब कहां चला गया पता ही नहीं। क्वापी पलायितम, कहां चला गया? नष्ट अर्थात नष्ट हो गया अथवा पलायन कर गया। इसलिए क्या है? अभी दुख की प्रतीति का कारण ही नहीं है, इसलिए क्या अब दुख की अप्रतीति है, ये बताया। आगे कहते हैं, अज्ञान निवृत्ति फलम कृतकृत्यत्वम प्राप्त प्राप्तत्वम प्राप्यत्वम च दर्शयति। ये जो अज्ञान निवृत्ति का जो फल है वो क्या है? कृतकृत्यता और प्राप्त प्राप्यत्व, इसको दिखा रहे हैं कि वो जो फल मिला है अज्ञान की निवृत्ति का वो किस तरह है, वो उसके विषय में बता रहे हैं। धन्योहम धन्योहम कर्तव्यम, धन्योहम धन्योहम कर्तव्यम, मेना विद्यते न किंचित, मेना विद्यते किंचित, धन्योहम धन्योहम प्राप्तव्यम, धन्योहम धन्योहम प्राप्तव्यम, सर्वम अद्य संपन्नम, सर्वम अद्य संपन्नम। धन्योहम धन्योहम, मैं धन्य हो गया। क्यों? कर्तव्य में न विद्यते किंचित, अब मेरे जीवन में अब कोई कर्तव्य शेष रहा नहीं है, क्योंकि कर्तव्य में ही क्या है मनुष्य को परिश्रम है, कर्तव्य करने में परिश्रम है, कर्तव्य करने में दुख है। अब मेरे जीवन में कोई कर्तव्य शेष रहा नहीं है, अब मैं शांति से बैठ जाऊंगा, अभी कोई चिंता नहीं, मुझे शांत हो गया, अब कोई कर्तव्य शेष न रहा नहीं। कर्तव्य में न विद्यते किंचित, यत किंचित भी कर्तव्य नहीं मेरे जीवन में। अब धन्योहम धन्योहम प्राप्तव्यम सर्वम अद्य संपन्नम, मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। क्यों? प्राप्तव्यम सर्वम अद्य संपन्न, जो प्राप्तव्य था, प्राप्त करने योग्य जो था, जो कुछ है, वो क्या हो गया? अब संपूर्णम अद्यम संपन्न, मुझे प्राप्त हो गया, अर्थात मैं परिपूर्ण हो गया। अब अद्य मतलब अभी इस समय में, आज मैं कृतार्थ क्यों हो गया? क्योंकि जो प्राप्त करने योग्य था वो पूर्ण रूपे न प्राप्त हो गया। इसलिए क्या है, मैं संपन्न हो गया, परिपूर्ण हो गया, अब मुझे किसी चीज की कमी है ऐसा मुझे लगता नहीं है, मैं पूर्ण ऐसा मालूम होता है, मैं अब तक काम पूर्ण काम हो गया मैं, इसलिए क्या है, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। इदानीं कृतकृत्ततया इत्यादिना जातायाः तृप्तिर निरतिशयत्वम् आह। कहता है 91 श्लोक के द्वारा जो कृतकृत्यता के द्वारा जो तृप्ति मिली थी और जो प्राप्य और प्राप्त उसके द्वारा जो तृप्ति मिली थी, वो तृप्ति कैसी है भाई, चलो तृप्त तो हो गए, आनंद हो रहा है, वो तृप्ति कैसी है, सातिशय है क्या निर्दिशय है, उसके विषय में बताते हैं निर्दिशयत्वम। वो तृप्ति कैसी है, निर्दिशय है, अर्थात अपरिछिन्न है, परिछिन्न नहीं है, अब उस तृप्ति में किसी भी प्रकार की परिछिन्नता नहीं है, व्यापक तृप्ति, अब वो तृप्ति हमेशा हमेशा के लिए हो गई, जहां भी जाएंगे जहां भी रहेंगे वो तृप्त ही रहेंगे, हमेशा खंडित नहीं होगी तृप्ति है किसी के द्वारा। धन्योहम धन्योहम तृप्तेर, धन्योहम धन्योहम तृप्तेर, मे कोपमा भविल्लोके, मे कोपमा भविल्लोके, धन्योहम धन्योहम धन्यो, धन्योहम धन्योहम धन्यो, धन्यः पुनः पुनर्धन्यः, धन्यः पुनः पुनर्धन्यः, धन्योहम धन्योहम, मैं धन्य हूं, मैं कृतार्थ हो गया हूं। तृप्तिर में को उपमा भविल्लोके, मैं धन्य क्यों हो गया, मैं हमेशा के लिए तृप्त क्यों हो गया, क्योंकि मेरी जो तृप्ति है उस तृप्ति में के लिए कोई उपमा ही नहीं है, मैंने मेरी जो तृप्ति है वो तृप्ति जैसी कोई तृप्ति नहीं जगत में, मेरी तृप्ति के लिए उपमा नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैं धन्य हूं। हाँ, मेरी तृप्ति के लिए कोई उपमा होती है तब वो उतना धन्यता मालूम नहीं होती, किंतु मेरी जैसी तृप्ति और किसी के पास है ही नहीं। जैसे लोक व्यवहार में भी होता है ना, कोई चीज मान लीजिए अपने पास है और अपनी जैसी चीज और किसी के पास नहीं है, तो उसको बड़ा आनंद होता है। इसी तरह ज्ञानी को भी दिख रहा है कि मेरी जो तृप्ति है, मेरी तृप्ति जैसा और कहीं किसी के पास तृप्ति है ही नहीं, ऐसी तृप्ति के लिए कोई उपमा ही नहीं है, इसलिए मैं क्या है, धन्य हो गया। धन्योहम धन्योहम धन्यो पुनः धन्यः पुनः पुनर्धन्यः। अब वो ज्ञानी क्या हो रहा है, आनंद में, तृप्ति में, जो आनंद की जो उसको आनंद हो रहा है, हर्ष हो रहा है, अब उसके मन में अथवा बोलते समय बस इतना ही कह पा रहा है, मैं धन्य हूं, धन्य, धन्य के आगे शब्द उसका नहीं निकल रहा है। क्यों बताएंगे, क्यों, उस जो धन्य जो है, तृप्ति है, अब उनको बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहा है दूसरा कुछ, मात्र उस तृप्ति का ही स्फुरन हो रहा है, आनंद का ही स्फुरन हो रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आगे बोलने जैसा कुछ है नहीं, तो क्या बोलेंगे, आगे कुछ बोलने जैसा है ही नहीं है, उस आत्मानुभूति के बाद कुछ बोलने जैसा शेष रहता नहीं है। बोलने जैसा शेष नहीं रहता का मतलब देखने जैसा, सुनने जैसा, स्पर्श करने जैसा, सूंघने जैसा कुछ शेष रहता ही नहीं है। जैसे हम लोगों के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, हमें देखने जैसा देखना भी अभी बहुत कुछ बाकी है, सुनना भी बहुत कुछ बाकी है, स्पर्श करना भी बहुत कुछ बाकी है, किंतु ज्ञानी के लिए ऐसा कुछ शेष रहा ही नहीं है, जिसके कारण क्या है, वो धन्य के आगे शब्द और कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है मुख से, बस धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। धन्य ही थी इतः परम वक्तव्य अदर्शनाथ, अब आगे बोलने जैसा कुछ न रहने के कारण आदर्शनाथ तुष्टि रेव परिस्फुरति, बोलने जैसा न रहने के कारण क्या है, तुष्टि के अतिरिक्त अब कुछ स्फुरन ही नहीं हो रहा है उनको, तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है। यदि तुष्टि के अतिरिक्त मालूम होता तो उसके बारे में बताया जाता, किंतु तुष्टि के अतिरिक्त कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है, इसलिए बोलने जैसा अब रहा नहीं। धन्य है, इसके आगे कोई शब्द ही नहीं निकल रहा होगा। तुष्टि, तुष्टि मतलब अब हो गया तृप्त होना, तुष्ट होना, संतुष्ट हो गया। हाँ, संतोष हो गया, अभी कोई मुझे रहा नहीं, अभी असंतोष जैसी कोई बात रही नहीं। मनुष्य प्रयास का वहां करता है, जहां संतोष नहीं वहां प्रयास करता है, जहां संतोष है तो उसके अतिरिक्त वहां वो जाता नहीं, जिसमें संतोष है उसको छोड़ता नहीं है। जहां संतोष नहीं है जिसको जो वस्तु होते हुए, तो फिर क्या करता है, उस वस्तु को छोड़ करके दूसरी जगह जहां संतोष मिलेगा वहां जाने की कोशिश करता है। अब आत्मा में संतोष है तो अब दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है, और क्या छोड़ने की, आत्मा को क्यों छोड़ेगा, जहां संतोष मिल रहा है उस वस्तु को कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा, तो अब वो संतोष है, उनको आनंद है, हर्ष है। धन्य इति अस्य सर्वस्य कारणभूत पुण्य पुंज परिपाकम अनुस्मृत्य तुष्यति, क्योंकि जिसके जिसके कारण उनको अब तृप्ति हो रही है उनका क्या कर रहे, ज्ञानी उल्लेख कर रहे हैं, ज्ञान के कारण वो ज्ञान को स्मरण किया उन्होंने, वो ज्ञान के कारण उनको क्या हो रही है, तृप्ति हो रही है, उस ज्ञान का अनुभव हो गया इसलिए तृप्ति हो रही है, दुख की निवृत्ति हो गई इसलिए तृप्ति हो रही है, धन्यता मालूम हो रही है उनको। इसी तरह अब ये जो तृप्ति हुई है, जो धन्यता आई है उनको, उसका और एक कारण बताते हैं, सर्वस्य कारणभूत पुण्य पुंज। देखिए संपूर्ण जो तृप्ति का जो कारण अथवा जो ज्ञान आना, दुख की निवृत्ति होना, ब्रह्मानंद की अनुभूति होना, कृतिकृत्यता मालूम होना, पूर्णता मालूम होना, इस सभी का और भी एक कारण है, वो कौन है, कारणभूत पुण्य पुंज। हमारी पुण्य भी क्या कर रहे हैं, हमें तृप्ति को दिला रहे हैं, क्योंकि पुण्य हो उस पुण्य का परिपाक जब हमें फलीभूत होता है पुण्य, तभी क्या है ये सब चीजें हमें प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, दुख की निवृत्ति होती है, धन्यता का एहसास होता है। तो कह रहे कारणभूत पुण्यम पुण्य पुंजम परिपाकम, अब उसका फल, परिपाक मतलब उस पुण्य पुंज का फल क्या है, ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्मानंद की अनुभूति, उस जो है पुण्य पुंज का जो परिपाक अर्थात फल का अब स्मरण कर रहा है, फल मिल गया किसका, पुण्य का फल, उस पुण्य का फल के कारण ही क्या है तृप्ति हो गई, इसलिए उस पुण्य का क्या है स्मरण करते हुए उनको आनंद हो रहा है, सचमुच मेरा पुण्य जो है कितना महान है, कितना अच्छा पुण्य है मेरा, जिसके कारण आज क्या है मैं धन्य हो गया, उस पुण्य का स्मरण हो रहा है कि सचमुच मेरे पुण्य के कारण आज मैं धन्य हो गया, तृप्त हो गया, संतोष प्राप्त हो गया मुझे। तुष्यति आह, उसके विषय में ये श्लोक कह रहा है, अहो पुण्यम अहो पुण्यम, अहो पुण्यम अहो पुण्यम, फलितम फलितम दृढ़म, फलितम फलितम दृढ़म, अस्य पुण्यस्य संपत्तेर, अस्य पुण्यस्य संपत्ते रहो वयमहो वयम, रहो वयमहो वयम, अहो पुण्यमहो, आश्चर्य लग रहा है उनको, सचमुच मेरा जो पुण्य है मेरे पुण्य जैसा और कोई पुण्य किसी का नहीं है, क्यों, मेरे पुण्य ने ऐसा फल दे दिया मुझे कि अब जो तृप्ति रूप फल है, आनंद रूप फल है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। तो उस पुण्य का स्मरण हुआ आ रहा है उनको, सचमुच मेरा पुण्य जो है, मेरे पुण्य जैसा और किसी का पुण्य नहीं है, मेरा पुण्य महान है। आश्चर्य मेरे पुण्य के विषय में कि जो क्या कर रहा है, पुण्य मुझे नित्य वस्तु को दे रहा है, नित्य आनंद को दे रहा है, नित्य तृप्ति को दे रहा है, इसलिए मेरा पुण्य जो है आश्चर्यमय है। फलितम फलितम दृढ़म, मेरा जो फल है फलित हो गया, कैसे, दृढ़ रूप से फलित हो गया। मेरी जो तृप्ति है वो दृढ़ है, वो अब वो कभी हटने वाली नहीं है। फलित का मतलब क्या, फलीभूत हो जाना, अर्थात फल मिल जाना, फलीभूत हो गया मतलब वो फल मिल जाना। वो फल क्या है, तृप्ति। वो ऐसी तृप्ति है पुण्य के कारण जो मिली हुई तृप्ति, दृढ़ तृप्ति है। वो तृप्ति अभी कभी हटने वाली नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मैं तृप्त हूं। अब अतृप्ति का कभी भी कोई अभाव अथवा प्रसंग आने वाला नहीं है। अस्य पुण्य से संपत्ति है अहो वयम, अहो मैं वयम। और ये जो पुण्य है, इस पुण्य के कारण जो है संपत्ति है। ये पुण्य रूप संपत्ति से क्या है, मुझे ये मुझे मिला है। पुण्य रूप जो संपत्ति है उसी से क्या है, ये तृप्ति मुझे मिली है। इसलिए अहो वयम, अहो वयम, नहीं अहंकार नहीं, नहीं ऐसा नहीं। देखिए अहंकार से नहीं बोल रहा, वो उल्टा जिसकी जिसके कारण मिला है उसका स्मरण कर रहा है, अहंकार नहीं है। जैसे मान हम कहते आपके कारण जो है मिल गया, सच में धन्य है, मैं भी धन्य हूं और आप भी जो है महान है, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं है, इसमें अहंकार वाली बात नहीं है। क्योंकि स्मरण कर रहा ना, अरे जिसके कारण मिला है उसका स्मरण करके उसको आनंद हो रहा है। उल्टा तो वो जो यह है कि उपकार जो है, उस उपकार को क्या कर रहा है, वो अनुभव कर रहा है ना, आप विनम्रता को क्या कर रहा है, वो स्वीकार कर रहा है ना, सामने दिखा रहा है, इनके कारण मिला, इस पुण्य के कारण मिला, शास्त्र के ज्ञान के कारण मिला, गुरु के कारण मिला, वो आश्चर्य हो रहा है उसको, सचमुच में धन्य हो गया। यहां पर कोई अहंकार वाली बात नहीं है, वो तो अपनी अनुभूति बता रहा है ना। अहंकार ने जो अनुभव हो रहा है उसी को प्रकट कर रहा है। इसलिए क्या है, मेरा जो पुण्य है सचमुच इस पुण्य के कारण ही मुझे क्या तृप्ति प्राप्त हुई है। एवं विध पुण्य संपादकम आत्मज्ञानम, जो पुण्य जो आत्मज्ञान कैसा है, पुण्य के संपादन से ही है। जिस पुण्य के संपादन से ही मुझे क्या आत्मज्ञान हुआ, ऐसी पुण्य का क्या है, उनको स्मरण होकर के आनंद हो रहा है। इसलिए क्या है, अहो वयम, अहो वयम, सचमुच हम लोग जो है धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। क्यों, क्योंकि हमारे जो अनादि काल से कितने जन्मों से हमने उस ज्ञान के लिए, तृप्ति के लिए हमने पुण्य किया था, आज उस पुण्य ने क्या कर दिया, किया हमें फल दे दिया, तो उस पुण्य का स्मरण करके आनंद हो रहा है। इदानीं सम्यक ज्ञान साधनम शास्त्रम तद उपदिष्टारम आचार्यम अनुस्मृत्य तुष्यति। इस समय में ज्ञान किसके द्वारा हुआ था, शास्त्र के द्वारा हुआ था। वो शास्त्र के ज्ञान किसके द्वारा हुआ था, आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा हुआ था। तो इन दोनों का स्मरण करते हुए उनको आनंद हो रहा कि ये शास्त्र ज्ञान, शास्त्र और शास्त्र को बताने वाले गुरु, उनका स्मरण करके क्या है, उनको आनंद हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के कारण धन्यता आ गई ना। अहो शास्त्रमहो शास्त्रो, अहो शास्त्रमहो शास्त्रम, अहो गुरु रहो गुरु, अहो गुरु रहो गुरु, अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम, अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम, अहो सुखम अहो सुखम अहो सुखम अहो शास्त्रम अहो शास्त्रम। सचमुच ये शास्त्र जो है आश्चर्यचकित है। इससे पहले न शास्त्र देखा था और न इसके आगे मैं देख पाऊंगा। क्यों? अब मैं रहूंगा नहीं तो शास्त्र क्या देखूंगा। जब ये शरीर छूट जाएगा अब मैं फिर जन्म तो होना नहीं, जन्म नहीं होगा तो मैं कहां शास्त्र को देख पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा। और इससे पहले भी मैंने देखा नहीं था। आश्चर्यचकित वाला यह शास्त्र है सचमुच। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई एक ऐसा शास्त्र भी होता है कि जो अनंत तृप्ति को देता है। सचमुच वो शास्त्र भी जो है महान है जिसने मुझे तृप्ति को दिलाई। तृप्ति को क्या है, उसने दिलाया। बार बार शास्त्र के बारे में कह रहे हैं गुरुर अहो गुरु हो। और उस जिस शास्त्र को जिस गुरु ने दिया वो गुरु भी बड़े महान है। ऐसे गुरु जो है ना पहले देखे थे ना अब आगे मैं देख पाऊंगा। इसलिए वो गुरु भी क्या है, महान है। वो जिसने क्या है उस पद को क्या है प्राप्त करा दिया, वो गुरु भी क्या है महान है। उस गुरु का स्मरण होकर के क्या है उनको आनंद हो रहा है। अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम। और उस गुरु के द्वारा जो ज्ञान आया है वो ज्ञान भी बड़ा क्या है आश्चर्य वाला है। सचमुच ऐसा जो ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं इस संसार में। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जिस ज्ञान ने क्या है हमेशा हमेशा के लिए मेरे जीवन का दुख ही खत्म कर दिया। अब हमेशा के लिए मैं तृप्त हो गया हूं। अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम। और उस ज्ञान के द्वारा जो सुख आ गया वो सुख भी क्या है महान है, आश्चर्यचकित है। वो सुख भी कि वो ऐसा सुख किसी में भी नहीं है। जो ज्ञान के द्वारा आया हुआ सुख वो सुख और किसी से भी मिलने वाला नहीं है। उस सुख का भी क्या है स्मरण कर रहा है, उस ज्ञान का भी स्मरण कर रहे, गुरु का भी स्मरण कर रहे, शास्त्र का भी स्मरण कर रहे। क्यों? इस तृप्ति के पीछे सबका हाथ है, इसलिए उनका स्मरण हो रहा है और आनंद हो रहा है। अहो शास्त्र मेति पुनश्च शास्त्र जन्यम ज्ञानम तत्सुखम च अनुस्मृत्य। शास्त्र और शास्त्र जन्य ज्ञान और उस ज्ञान के देने वाले गुरु और उस गुरु का स्मरण हो रहा है, उस ज्ञान के द्वारा जो सुख मिल रहा है, इस सब का स्मरण करके उनको एक आश्चर्य जैसा हो रहा है। जैसे गीता में कहते हैं ना आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत वदित तय है न आश्चर्यवत मन्यम श्रोणति। तो जैसे वहां पर कहते हैं आश्चर्य है, आश्चर्य का मतलब क्या होता है न इसे पहले कभी देखा न अभी की क्या है न देख पाएंगे। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो ऐसा क्या हमारे सामने खड़ा हो गया। उसको क्या कहते हैं आश्चर्य, अद्भुत है, आश्चर्य हो रहा है उनको इन सभी चीजों को देख करके। और ये सब देख करके उनका स्मरण करके और आनंद हो रहा है उनको। अब ये जो प्रकरण किस विषय में था, ज्ञानी के विषय में था। ज्ञानी कैसे अपने आप को शांत रखता है, अपने आप को क्या है वो संतप्त नहीं करता है, वो कैसे नहीं करता है संतप्त। इस शरीर को लेकर के अपने आप को क्या है पीड़ित नहीं करता है, अपने आप को तपाता नहीं है। क्यों नहीं तपाता है? क्योंकि वो तृप्त हो गया है। इसलिए उन्होंने ये कह दिया था, क्या कह दिया था कि ये जो किम इच्छा कश्य काम आय, किम इच्छा मतलब किस अनात्म वस्तु की इच्छा से, और कश्य काम आय अर्थात किस इस ये जो आत्मा है चिदाभास है वो तो मिथ्या है। तो ऐसा मिथ्या चिदाभास और ऐसी अनात्म वस्तु के पीछे वो ज्ञानी क्यों पड़ेगा? वो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तृप्त है, उसने अपने स्वरूप को जान लिया। जानने के बाद अनात्मा वस्तु के लिए और इस मिथ्या सिद्धाभास के लिए क्या है, अपने आप को तपाएगा नहीं है। नहीं तपाएगा तो क्या होगा भाई, बस वो तृप्त रहेगा। वो कैसी तृप्त रहेगा, वो इस प्रकरण के द्वारा बताया। वो तृप्ति कैसी आ गई, उसने उस अनात्मा के पीछे जाना कैसे छोड़ दिया, उसका कारण क्या है। इस चिदाभास के पीछे जाना उसने क्या है, छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, पूरा इस प्रकरण में क्या है बताया। इस प्रकरण के विषय में कहता है, ये प्रकरण तो हमने श्रवण कर लिया, अब इस प्रकरण का श्रवण करके इस प्रकरण का क्या अनुसंधान करना चाहिए, तो उस अनुसंधान से क्या मिलेगा। वो कहते हैं जैसे ज्ञानी को क्या है निरंतर तृप्ति मिली है, वो तृप्ति क्या है हमें मिलेगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकरण को अर्थात ये ग्रंथ आया, प्रकरण के रूप में जो ग्रंथ आया है, इस ग्रंथ का यदि हम अनुसंधान करता है उसके फल के विषय में बता रहे हैं। तृप्ति दीपम इमम नित्यम, तृप्ति दीपम इमम नित्यम, येन एनुसंध दधते बुधा, ब्रह्मानंदे निमज्जन्तस्, ते तृप्यन्ति निरंतरम्, कहते तृप्ति दीपम इमम। ये जो तृप्तिदीप प्रकरण है, तृप्तिदीप प्रकरण नाम वाला जो ग्रंथ है, जो नित्यम ये अनुसंधते, जो इसका अनुसंधान करता है अर्थात इसका मनन करता है, श्रवण करता है, निधिहासन करता है, तो कहता है ऐसा जो ज्ञानी कोई भी साधक हो, वो ज्ञानी यदि इसका अनुसंधान करेगा तो कहते हैं ब्रह्मानंदे निमज्जन्त, वो ब्रह्मानंद में क्या है निमग्न हो जाएगा, उस आनंद में डूब जाएगा वो, यदि क्या है अनुसंधान करता है। किसका, तृप्तिदीप प्रकरण का अनुसंधान करे कोई ज्ञानी। अब हम लोगों ने जान लिया तृप्तिदीप प्रकरण को, तृप्तिदीप प्रकरण के विषय में अब क्या है, हम हो गए ज्ञानी हो गए। तो हम लोग यदि इसका अनुसंधान करते रहेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, हम ब्रह्मानंद में डूब जाएंगे। तृप्यन्ति निरंतरम, वो तृप्ति कैसी होगी, निरंतर तृप्ति होगी। ये क्या है, प्रकरण के अनुसंधान का फल बताया। आगे के विषय में हम लोग कल कर लेते हैं। हाँ, इति श्री विद्यारण्य कृत पंचदश्याम तृप्ति दीपाख्यम प्रकरणम समाप्तम। अर्थात ये कहते हैं स्वामी विद्यारण्य मुनि कृत जो पंचदशी में तृप्तिदीप नाम का जो प्रकरण है, ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।